सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवलनाणुजोय्य छद्दौवमणिज्यं पवायिः नमीऊणजिणं वणिमो दौवणियोगं गणीयसारम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी और जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हम तीसरी पुस्तक में 72 पृष्ठ पर आए हैं। हमारा अभी प्रकरण चल रहा है सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर आगे के जो गुणस्थान है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गुणस्थान, इनमें जीवों की संख्या भी बता रहे हैं। तो सबकी कॉमन यानी सामान्य उन्होंने बता दिया कि पल्ले का असंख्यातवा भाग इतनी संख्या होती है। जब किसी गुणस्थान में अभी संख्या बताएंगे तो तीनों काल में जब कभी अधिक से अधिक मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। तो सबके लिए पल्ले का असंख्यात भाग, तो क्या सबकी संख्या समान है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो असंख्यात भाग कहा ना, तो वो जो जिस संख्या से भाग देना है वो हर एक गुणस्थान के लिए अलग अलग है। यानी ऊपर तो पल्ले ही रखेंगे और नीचे की संख्या अलग अलग होगी। जिस संख्या से हमें भाग देते हैं, हम भाग देते हैं, तो उसकी संख्या अलग अलग है। तो ये हम अभी देख रहे हैं सासाधन सम्यक दृष्टियों के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो उन्होंने मान लिया कि पल्ले के बदले हम मानेंगे पन्नटी, और यहाँ जो भागहार है तो सासाधन वालों के लिए 32 मान लिया है, जिसको उन्होंने असंख्यात आवली कहा था। क्योंकि ऐसी कल्पना करके फिर ये सारे गणित समझाएंगे हम। तो अब हम यहाँ 72 पृष्ठ पर आए हैं, तो उसके ऊपर हमने देखा था कि नीचे की जो शंका पूछी है ना, उसके ऊपर दो पैराग्राफ ऊपर जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, यानी नीचे से चौथा पैराग्राफ, उस सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण पल्योपम का असंख्यातवा भाग है, जो पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। यानी पल्ले के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात बार गुणा करो, यानी उसको असंख्यात से गुणा करो, तो जितनी संख्या आती है उतना सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। इस प्रकार प्रमाण उन्होंने बता दिया। अब उसी को उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताया है। पल्ले के लिए हम मान लेते हैं पन्नटी, तो पन्नटी का प्रथम वर्गमूल 256 है, और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण हमने देखा था 2048 है। वो कैसे निकाला? पल्ले डिवाइडेड बाय यानी पन्नटी डिवाइडेड बाय 32, ऐसा किया था हमने पहले, तो उसका 2048 संख्या आती है। तो अभी ये जो 2048 है उसको 256 से भाग देंगे। पन्नटी का प्रथम वर्गमूल है ना, उससे सासाधन वाले जीव राशि को भाग देंगे तो संख्या 8 आती है। यानी 8 बार पन्नटी का प्रथम वर्गमूल, 8 बार, यानी 8 बार प्रथम वर्गमूल कितना है? 256। उसको 8 से गुणा करो तो 2048। ये क्या है? अभी यहाँ हमने जो लिया है सासाधन जीव राशि है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, अब ये शंका पढ़ेंगे हम। किस कारण से? कारण बता रहे हैं ना। देखो अभी हमने थोड़ा सा हम पहले देख लेते इसको। 71 पृष्ठ पर। जब जब ऐसे मिथ्यात्व गुणस्थान में भी संख्या जब देखी थी, ऐसे हमने ये सभी बातें देखी थी। 71 पृष्ठ पर ऊपर से तीसरी लाइन, वर्ग स्थान में खंडित, भाजित, विरलित, अपहृत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति और विकल्प, इन सब के द्वारा सासादन सम्यक दृष्टि जीवराशि का प्रमाण कहते हैं। इसमें से हमने ये सारी बातें देखी थी, खंडित देखा, भाजित, विरलित, अपहृत, अभी अभी प्रमाण बताया। कितना प्रमाण बताया? पल्ले के असंख्यात्वा भाग इतना, या उसको दूसरी तरह से बताना है तो पल्ले के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो इतना। उसके लिए अभी कारण बताने जा रहे हैं, शंकाकार ने कारण पूछा है, उसके बाद निरुक्ति बताएंगे और विकल्प बताएंगे। विकल्प ने हमने कल देखा था, जैसे वो अलग अलग द्विरूप वर्ग धारा या घन धारा में और घना घन धारा में अलग अलग संख्याओं का भागाकार समझाते हैं, तो वहाँ हमने विकल्प भी देखे थे। उसी पद्धति से ये सब सासादन गुणस्थान वालों की जो संख्या है उस पर भी ये सभी बातें घटा रहे हैं। अब कारण देख रहे हैं, शंकाकार पूछता है कि किस कारण से पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है। ये असंख्यात प्रथम वर्गमूल कैसे आपने निकाला, उसका कारण बताते हैं, उसका समाधान। अभी इसमें अलग अलग पद्धति से हमको वो समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, पल्योपम के प्रथम वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर, अभी हमारी भाषा में हम प लिखेंगे, प को प के प्रथम वर्गमूल से भाग देंगे। किसी भी वर्ग को उसके वर्गमूल से भाग देते हैं तो क्या संख्या आएगी? प। हाँ देखो, पल्योपम के प्रथम वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर पल्योपम का प्रथम वर्गमूल आता है, क्योंकि वर्गमूल गुणा वर्गमूल इज इक्वल टू वो संख्या। जैसे हम क स्क्वायर करेंगे और क से भाग देंगे तो क आएगा, वैसे प का ये स्क्वायर रूट है, यानी इसका ये वर्ग है। वर्गों को जिस संख्या से भाग देते हैं ना उसके वर्गमूल से, तो वो वर्गमूल ही आएगा उसका उत्तर। तो उसका उत्तर आता है पल्ले का वर्गमूल। ये बहुत आसान है, इसमें कोई जैसे हम 256 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16 ही आएगी ना। वर्गों को उसके वर्गमूल से गुणा डिवाइड करते हैं तो वो वर्गमूल जितनी संख्या आती है। अब आगे, उसी के दूसरे वर्गमूल का, यानी किसी संख्या को उसके वर्गमूल से डिवाइड करते हैं तो वर्गमूल ही उत्तर आता है। अब आगे समझाते हैं, उसी के दूसरे वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर, अभी हमारी जो वर्गधारा हमने देखी 4, 16, 256 और पन्नट्ठी, पन्नट्ठी को प्रथम वर्गमूल से भाग देते हैं, यानी पन्नट्ठी को 256 से डिवाइड करते तो 256 आया, बराबर। अब कहते हैं पन्नट्ठी को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 ये उसका द्वितीय वर्गमूल हुआ। पन्नट्ठी से शुरू करेंगे तो 256 उसका प्रथम वर्गमूल, 16 उसका द्वितीय वर्गमूल, 4 उसका तृतीय वर्गमूल और 2 उसका चतुर्थ वर्गमूल होगा। उल्टी गाड़ी ले रहे ना, तो कहते हैं कि पन्नट्ठी को द्वितीय वर्गमूल से भाग देंगे तो क्या होगा? पन्नट्ठी डिवाइडेड बाय द्वितीय वर्गमूल उसका। किसी भी संख्या को उसके द्वितीय वर्गमूल से भाग देंगे तो क्या आता है? देखो, दूसरे वर्गमूल का जितना प्रमाण हो उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं। नहीं समझा? ये 16, यहाँ 16 प्रमाण है तो 16 बार 256 आएंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। पन्नट्ठी का द्वितीय वर्गमूल 16 से पन्नट्ठी को भाग देंगे तो कितनी संख्या आएगी? 16 बार 256 आएगी, यानी द्वितीय वर्गमूल की जो संख्या है उतनी ही बार प्रथम वर्गमूल आएंगे। हम करके देखते हैं, पनट्ठी कितनी है? 256 गुना 256 और डिवाइडेड बाय 16 किए तो 16 के 16 और यहाँ 16 आएंगे, तो 16 बार 256 आ गए ना। यानी द्वितीय वर्गमूल की जितनी संख्या है उतने बार प्रथम वर्गमूल आते हैं। अब ऐसे ही आगे चलेंगे। अब पनट्टी को उसके तृतीय वर्गमूल से भाग देंगे तो क्या होगा, कितनी संख्या आएगी? यहाँ लिखा देखो, पल्योपम के अगले पेज पर, 73 पेज पर, पल्योपम के तीसरे वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर दूसरे और तीसरे वर्गमूल के प्रमाण का परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं। ये पन्नट्ठी है, ये पहला वर्गमूल है, दूसरा वर्गमूल है, तीसरा वर्गमूल है। तीसरे वर्गमूल से हम डिवाइड करते हैं, पन्नट्ठी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 गुना 16 गुना 256। हम करके देखेंगे ना अभी। देखो, हमने देखा था ना, पन्नट्ठी यानी 256 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ कितने आएंगे? 424 64, यही है ना, 64। ये सिंप्लीफाई है ये, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी वर्ग यानी पन्नट्ठी को स्क्वायर रूट पन्नट्ठी से डिवाइड करते हैं तो रूट यानी प्रथम वर्गमूल कहेंगे हम इसको, मुंह एक कहेंगे इसको, समझने के लिए भी प्रथम वर्गमूल है ना, मुंह एक कहेंगे। और यहाँ भी इसी का मूल एक से हम डिवाइड करते हैं इस संख्या को, पन्नट्ठी को उसके प्रथम वर्गमूल से डिवाइड किया तो प्रथम वर्गमूल इतनी संख्या आई। अब दूसरा इक्वेशन, पन्नट्ठी को मुंह 2 यानी 16 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे? प्रथम मुंह 1 इंटू मुंह 2 यानी मुंह 2 बार मुंह 1 आए। अभी समझे हम, पन्नट्ठी को उसके प्रथम वर्गमूल से डिवाइड करेंगे तो प्रथम वर्गमूल आया, पन्नट्ठी को उसके द्वितीय वर्गमूल से डिवाइड करते हैं तो जो द्वितीय वर्गमूल गुना प्रथम वर्गमूल ये संख्या आ गई, पन्नट्ठी को तृतीय वर्गमूल से डिवाइड करेंगे तो मुंह 1 इंटू मुंह 2 इंटू मुंह 3 यानी 256 गुना 16 गुना 4। अभी पन्नट्ठी को 200 गुना 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 क्या है पन्नट्ठी का? 1 2 3 चौथा वर्गमूल है तो मुंह 1 गुना मुंह 2 गुना मुंह 3 गुना मुंह 4। जितने वर्ग स्थान हम पहले आते हैं वो उस सभी के वो मूल से गुणा करो। मान लेते 10वां वर्गमूल से हम उसको डिवाइड करते हैं तो मुंह 1 से मुंह 10 तक सबको ले लेना उसमें, ये आसान हो गया ना तरीका। अभी कहते हैं, अभी आगे ऐसा समझाएंगे कि पल्ले के असंख्यात वर्ग स्थान पहले आ जाओ, असंख्यात वर्ग पहले आ जाओ तो क्या होगा? मुंह 1 गुना मुंह 2 गुना मुंह 3 गुना मुंह असंख्यात। और इन सब की जो है संख्या गुणाकार उसको अगर हम असंख्यात मान लेते हैं तो अभी जो आया था, अभी पल्ले का असंख्यात प्रथम वर्गमूल संख्या निकाली थी, पल्ले को असंख्यात से डिवाइड करते हैं, असंख्यात आवली से हमने डिवाइड किया था जिसको हमने 32 मान लिया था, क्या ले? परंतु वो 32 अभी तो मानने के लिए हमने 32 कहा, परंतु अगर इसका ऐसा हम उसको अंदाज निकालते हैं तो असंख्यात वर्ग स्थान पहले वाले पल्य की संख्या उसका असंख्यात वर्गमूल है वो असंख्यात आवली है तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये सारे ही आगे के वर्गमूलों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये सब मिलकर असंख्यात संख्या आ जाएगी। तो हाँ, ये तो यहाँ तो हमने पन्नट्ठी लिया है ना, पन्नठी लिए है इसलिए वो संख्या नहीं आ रही। देखो इसको पढ़ेंगे और वो पन्नठी के असंख्यात्वा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, मैक्सिमम चार बार ही वर्गमूल कर ही सकेंगे हम, दो के आगे कहाँ जाएंगे वर्गमूल करने को। हाँ पल्ले को असंख्यात बार असंख्यात से डिवाइड करेंगे तो असंख्यात ही आता है। हाँ असंख्यात हाँ देखो ये क्या है, ये असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण, द्वितीय वर्गमूल से लेकर आगे सभी का संख्या ये मल्टीप्लाई करो वो भी असंख्यात ही होगी, वो संख्या असंख्यात ही आने वाली है तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल हो जाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। देखो शुरू से फिर पढ़ते हम समाधान 72 पेज पर नीचे दो लाइन है ना वहाँ से डॉक्टर मिला। हाँ कई हाँ हाँ हो ही जाएगा। देखो पल्ले के असंख्यात तो भाग जब हम कहते हैं हाँ तो छोटा ही हो जाता है उसका असंख्यात तो भाग, फिर भी असंख्यात ही रहते हैं, संख्यात नहीं हो जाता वो, पल्ले का असंख्यात भाग भी हाँ असंख्यात ही रहता है। नहीं नहीं उसको यही कहना है कि पल्ले को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो पल्ले छोटा हो जाएगा। हाँ देखो पन्नठी हमने मान लिया है ना, पन्नठी को पल्ले मान लिया हमने समझाने के लिए। हाँ तो पन्नठी को समझो हम चार से डिवाइड करते हैं, चार से हमने डिवाइड किया पन्नठी को तो कितने प्रथम वर्गमूल आ गए, 64 प्रथम वर्गमूल आ गए, 64 प्रथम वर्गमूल आ गए। वैसे यानी वो पन्नठी से छोटे ही आए ना, 64 गुना 256 ये 256 गुना 256 से छोटा ही है, वैसा पल्ले को हमने उसके किसी असंख्यात से भाग दिया तो उसका जो प्रथम वर्गमूल है उससे थोड़ा बड़ा, कितना बड़ा तो उसको असंख्यात गुणा करो इतना बड़ा है, परंतु पल्ले जितना बड़ा तो होगा ही नहीं क्योंकि पल्ले को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 100 को किसी भी संख्या से गुणा आप डिवाइड करो वो तो छोटी होने वाली, 2 से भी अब डिवाइड करेंगे तो 50 ही आने वाला है। वैसे पल्ले को किसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ हमने पन्नठी को 32 से डिवाइड किया है तो छोटी फिगर ही आने वाली है। क्या रहे? अब यहाँ क्या कहना चाहते फिर हम पढ़ते समाधान। पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल का पल्ल्योपम में भाग देने पर पल्ल्योपम का प्रथम वर्गमूल आता है। अभी हम इसको पन्नठी पर घटित करते हैं, पन्नठी को उसका प्रथम वर्गमूल 256 से भाग देंगे तो 256 आता है। उसी के ने उसी पल्ले के ही दूसरे वर्गमूल का पल्ल्योपम में भाग देने पर, अपने उदाहरण में पन्नठी को 16 से भाग देने पर दूसरे वर्गमूल का जितना प्रमाण हो, दूसरा वर्गमूल प्रमाण 16 है, उतने प्रथम वर्गमूल आते हैं, यानी 16 × 256 आते हैं। पल्ल्योपम के तीसरे वर्गमूल का यानी 4 का पल्ल्योपम में भाग देने पर दूसरे और तीसरे वर्गमूल के प्रमाण का परस्पर गुणन करने से, वो गुण करने से लिखा है, गुणा लिखोते गुणन कहो या गुणा कहो, जो अभी उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं, यानी हमने देखा था ना तीसरे वर्गमूल से भाग दिया यानी 4 से भाग दिया तो प्रथम वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल गुणा तृतीय वर्गमूल, द्वितीय और तृतीय कितने हो गए 16 × 64 तो 64 × 256 यानी 256 × 64 आ गए। इस क्रम से असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर, उल्टा क्रम ले रहे हैं ना हम, इसलिए असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर जो असंख्यात आवलिया स्थित है, ये हमारा पल्ले का भागाहार जो है संसाधन की संख्या निकालने के लिए हम पल्ले को असंख्यात आवलियों से डिवाइड करते हैं। उनका पल्योपम में भाग देने पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार कारण का वर्णन समाप्त हुआ। कारण पूछा था असंख्यात प्रथम वर्गमूल क्यों आते हैं, तो उन्होंने इक्वेशन सारे बता दिए। किसी भी बड़ी संख्या के हमको किसी छोटी संख्या से भाग देने और वो उसकी अगर समझो चौथा वर्गमूल है, दसवां वर्गमूल है और कहीं आगे वाला है, तो इन शॉर्ट हम सभी उसकी संख्या टोटल निकाल सकते हैं। इसी को फिर उदाहरण द्वारा बताया जो अभी हमने देखा था। पल्ले के प्रथम वर्गमूल 256 का 65536 यानी पन्नट्टी में भाग देने पर 256 लब्ध आते हैं। ये उसका प्रथम वर्गमूल है ना, उतना ही लब्ध है। दूसरे वर्गमूल 16 का पन्नट्टी में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल 16 बार 256 अर्थात 4096 लब्ध आते हैं। तीसरे वर्गमूल 4 का पन्नट्टी में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल 16 और तीसरे वर्गमूल 4 को परस्पर गुणा करने से 64 लब्ध आते हैं। आते के बाद कॉमा नहीं चाहिए, है के बाद चाहिए। आते हैं उतने अर्थात 64 बार प्रथम वर्गमूल 256 अर्थात 16384 लब्ध आते हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर नीचे जाने पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध आवेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि असंख्यात आवली से जिससे हमको डिवाइड करना है, आवली का स्थान पल्ले से असंख्यात स्थान नीचे है। देखो द्विरूप वर्गधारा हमने देखी थी, 216 256 पन्नट्ठी बादाल इकट्ठी, अब आगे बहुत 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 स्थान जाने पर आवली नाम का एक उसमें आता है। आवली यानी एक सेकंड में जो सैकड़ों होती है ना, उसमें कितने समय है, तो एक आवली में कितने समय है, जघन्य युक्ता संख्यात। तो जघन्य युक्ता संख्यात फिगर द्विरूप वर्गधारा में आएगी, क्योंकि आवली संख्या उसमें आती है। अब आवली के आगे असंख्यात वर्गस्थान चले जाओ तब जाके पल्ले आएगा। तो इसलिए अभी ये द्विरूप वर्गधारा में क्या आवली स्थान पर है, नहीं 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है, यानी संख्यात पल्लों का एक सागर। संख्यात है ना, 10 कोड़ा कोड़ी तो काउंटेबल फिगर है, तो उसको संख्यात कहा है। तो पल्ले आता है द्विरूप वर्ग धारा में, सागर नहीं आएगा, क्योंकि पल्ले के आगे का स्थान कौन सा होगा, पल्ले स्क्वेयर होगा और सागर तो इन बिटवीन पड़ेगा। सागर द्विरूप वर्गधारा में नहीं आता, इस समय कहना चाहती। पल्ले के आगे का स्थान कौन सा होगा, पल्ले का स्क्वायर, फिर उसके आगे और उसके स्क्वायर, और सागर तो इसमें कुछ गुणा करने पर, खाली संख्यात से गुणा करने पर आता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है, हाँ स्मॉल फिगर है, यानी द्विरूप वर्गधारा में नहीं आती है वो। क्या है, अब देखो इसको फिर, हाँ द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान है, अंतिम सारे वो असंख्यात वो उस बीच में आएंगे, अनंत के भेद आएंगे, फिर केवल ज्ञान वाला अंतिम जो लास्ट है द्विरूप वर्गधारा का लास्ट स्थान उसका। देखो अभी अच्छा किया आपने प्रश्न पूछा, थोड़ा हम आपका प्रश्न ऐसा है कि द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान है, द्विरूप घनधारा जो है वो कहाँ से शुरू होते, 8 का वर्ग 64, 8 नहीं लेना 64, ये क्या हुआ, 4 का घन हुआ, पहला स्थान 4 का घन है, और घना घन धारा में पहला स्थान क्या है, 64 का घन यानी 4:9, 512 तो उसका वर्ग है, 512 का वर्ग 262144 यानी 4:9, तो अभी आप कहीं आप ही जवाब देना, मैं प्रश्न आपको ही पूछूंगी। हाँ, तो ये जो घन धारा है उसका अंतिम उसका अंतिम स्थान पहले वो एंड होगा का केवल ज्ञान के नीचे होगा? क्यों? बिल्कुल अच्छा, देखो केवल ज्ञान ये उत्कृष्ट अनंत अनंत है, उससे बड़ी कोई फिगर है ही नहीं है। तो यहाँ केवल ज्ञान का घन हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा। तो कहाँ हो सकेगा? बहुत आगे होगा। तो इसका तो उसके प्रथम वर्गमूल का घन होगा क्या? नहीं, बोलो नहीं होगा। क्योंकि देखो ना, अभी हम मान लेते यहाँ पनट्टी को हम करते हैं, तो पनट्टी के पहले वाला यानी 256 का घन यहाँ पर आया, और पनट्टी तो 256 का वर्ग है, यानी एक स्थान आगे भी वो नहीं हो सकता है, प्रथम वर्गमूल का घन भी नहीं हो सकता है। अब ये द्वितीय वर्गमूल इसका भी 16 है, अभी दो स्थान यहाँ देखेंगे हम केवल ज्ञान के, दो स्थान पहले, तो 16 का घन कितना होगा? 4096। तो 4096 ये तो पनट्टी से छोटा है, यानी घन धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान के दो स्थान पहले वाला होगा। केवल ज्ञान की जो वर्गशाला का है ना, जितवे स्थान पर है, उसके दो स्थान पहले आना, यानी केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन होगा यहाँ, ये उसका अंतिम स्थान होगा। घनाघन में तो और डिफरेंस होगा। देखो अभी पनट्टी के साथ देखते हम घनाघन कहाँ आएगा। पनट्टी के तो फिगर कितनी है? 65536। अब इसके 4:9 कितने आते हैं? 2,00,000 और समथिंग। वो तो वो कितने ज्यादा है ना? और फिर और एक वर्गस्थान दो को देते हैं साथ में, और 2:9 इज 512, यानी वो इसका अंतिम स्थान होगा ना घनाघन में, पनट्टी के छोटा वाला। तो इतने स्थान वो पहले चला जाएगा,
दो स्थान के आगे
होगा। बहुत आगे होगा।
हाँ,
और ज्यादा, दो क्या तीन ज्यादा, और दो स्थान, हाँ चार स्थान, चार स्थान, हाँ चार स्थान आगे, यानी इससे चार स्थान आगे। हाँ, क्योंकि ये इसके ये देयर शुड नॉट एक्सीड केवल ज्ञान, उसको केवल ज्ञान को एक्सीड नहीं होना चाहिए। होगा ही नहीं ना। हाँ, आपका ऐसा ही प्रश्न है, घनाघन केवल ज्ञान का घन और केवल ज्ञान का घनाघन, ऐसा होता ही नहीं है, वो उत्कृष्ट अनंत अनंत है। देखो अभी यहाँ हम पढ़ेंगे, ये उन्होंने कारण बताया कि असंख्यात प्रथम वर्गमूल क्यों है, उसका कारण यहाँ बता दिया। अब शंका 73 पेज पर हम आए हैं, बीच में जो शंका लिखा है वहां, असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं, इसकी निरुक्ति क्या है, वो कैसे डिराइव किया, अभी उसको बताएंगे। समाधान, असंख्यात आवलियों का पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अभी अपने उदाहरण में पनट्टी का प्रथम वर्गमूल 256 है, प्रथम वर्गमूल को असंख्यात आवली हमने मान ली है 32, उसका भाग देने पर कितनी संख्या आ गई? 8 आती है, तो 8 प्रथम वर्गमूल हो गए। ये असंख्यात का प्रमाण कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो जिस असंख्यात आवली, जिस संख्या से हम पल्ले के प्रथम वर्गमूल को डिवाइड करने वाले हैं, ये 256 कितने बार लेना है, असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं ऐसा उन्होंने कहा, तो असंख्यात का प्रमाण क्या है? देखो देखो, सासादन की संख्या कितनी है? p/32, p/32 यानी 2048 आते हैं। उसको उन्होंने पल्ले के प्रथम वर्गमूल असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं ऐसा लिखा, तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं तो दैट इज इक्वल टू प्रथम वर्गमूल असंख्यात होने चाहिए, यानी 256 गुना समथिंग चाहिए। तो वो कैसा निकालना, तो 256 को 32 से डिवाइड करो तो 8 आते हैं, तो 256 गुना 8 हो गए, यानी असंख्यात का प्रमाण यहाँ 8 आएगा। असंख्यात प्रथम वर्गमूल कहे ना, 8 बार 256, 256 को 8 से गुणा करो तो 2048 आते। निरुक्ति देखो हमारी संख्या कैसे आती है शासाधन की, पल्ले को 32 यानी असंख्यात आवली से हम डिवाइड करते हैं तो 2048 हमारा उत्तर आ गया। अब इसी को अन्य तरीके बताना है तो उन्होंने कहा था असंख्यात प्रथम वर्गमूल, तो यहाँ भी असंख्यात आवली कहा और वहाँ भी असंख्यात प्रथम वर्गमूल कहते हैं, परंतु वह असंख्यात असंख्यात डिफरेंट है। यहाँ असंख्यात आवली में 32 लिया और वहाँ असंख्यात प्रथम वर्गमूल में 8 ही आ रहे हैं, क्या लेते हैं ना। तो ये एक संख्या कैसे निकालनी है, तो यहाँ क्या कहते हैं देखो समाधान फिर पढ़ेंगे। असंख्यात आवलियों का यानी 32 का पल्योपम के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर यानी 256 में भाग देने पर जो प्रमाण आवे, कितना प्रमाण आता है हमारे लिए 8 आता है, उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, उतने प्रथम वर्गमूल में ले 8 बार प्रथम वर्गमूल यानी 256 गुना 8। क्या क्या पल्ले की जो फिगर है पल्योपम की, हाँ वो कौन सी धारा में आते हैं, तो द्विरूप वर्ग धारा में आती है। आपका प्रश्न है वो कौन सा वाला असंख्यात है। हाँ अभी हमने आवली को क्या कहा, जगन नियुक्त असंख्यात, और आवली के आगे वर्ग 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 असंख्यात बार करो तो पल्ले आता है, हाँ असंख्यात असंख्यात हो जाएगा वो, क्योंकि आवली देखो आवली का एक बार वर्ग करो तो असंख्यात असंख्यात होता है, नहीं समझे। जघन्य युक्त संख्यात इंटू जघन्य युक्त संख्यात यानी द्विरूप वर्ग धारा में आवली का स्क्वेयर करो, जिसको प्रतरावली कहते हैं, आवली इंटू आवली इज इक्वल टू प्रतरावली, वो हो गया असंख्यात संख्यात का जघन्य। अब उसके कितने असंख्यात वर्ग स्थान चले जाओ तब जाके पल्ले आता है, यानी तो असंख्यात संख्यात का कोई भेद है, अनंत के करीब भी नहीं है, अनंत के भी करीब नहीं है, वो मध्यम असंख्यात असंख्यात का भेद है वो, क्या लगता है। देखो ये फिगर्स भी अपने ख्याल में आए तो ऐसा लगता है कितनी आवली कहाँ, सेकंड का भी सैकड़ोवा भाग, हजारवा कहो तो भी ठीक, और पल्ले कितना बड़ा है कि जिसके असंख्यातवे भाग में असंख्यात अबज करोड़ वर्ष होते हैं, तो पल्ले ने कितनी बड़ी संख्या है फिर भी वो असंख्यात ही है, अभी वो अनंत नहीं हुई है। पल्ले कहो सागर कहो उसमें अनंत समय नहीं है, असंख्यात समय है। और सुनना है जितने स्थान पर पल्ले हैं उतने आगे चले जाओ, मान लेते 100वें स्थान पर पल्ले हैं तो और 100 आगे चले जाए तो क्या आएगा, सुचंगुल आएगा, और उस सुचंगुल में भी प्रदेश कितने, इसमें प्रदेश कितने असंख्यात, और इससे लोकाकाश कितना बड़ा उसमें प्रदेश कितने, तो वो असंख्यात कितना बड़ा होगा पल्ले से भी, ख्याल आता है ना, इन्हें पल्ले कहीं का नहीं है उसके सामने। लोक भी असंख्यात में ही आता है ना, लोक के प्रदेश कितने ज्यादा है वो भी असंख्यात है। अब पढ़ेंगे आगे, हमने देखा ना चौथी लाइन तक आए, उतने पल्योपम के प्रथम वर्गमूल होते हैं यानी 8 गुणा 256 आते हैं, अथवा दूसरी तरीके से बताते असंख्यात आवलियों का पल्योपम के तीसरे वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आवे देखो अभी हम यहाँ हम करते हैं अपनी जो संख्या है, पन्नट्टी का तीसरा वर्गमूल कौन सा है? एक दो चार। चार को असंख्यात आवरी हमने 32 मान ली है। असंख्यात आवली, असंख्यात प्रथम वर्गमूल ने असंख्यात आवली, तीसरे वर्गमूल को भाग देना, एक अष्टमांश आ गए, बराबर। अब उसे क्या करना, देखो जो लब्ध आवे यानी 1/8 आया, उससे तीसरे वर्गमूल को गुणित करके, तीसरा वर्गमूल कितना है? चार। चार को गुणित करना है, 1/2 आ गए। फिर उस गुणित राशि से दूसरे वर्गमूल को गुणित करके यानी 16 को गुणित करना, हाँ 8 आ गए। वहां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, 8 × 256। अन्य पद्धति से किए यानी जिस संख्या हमारी वो असंख्यात आवली है, 32 हमने मान लिए, ऐसा भी यहाँ भी करते हैं, दूसरे वर्गमूल पर भी घटित कर सकते हैं। दूसरे वर्गमूल पर घटित करना है तो 16 को 32 से डिवाइड करो, हाफ आए, हाफ से 16 को ही गुणित करो, 8 आए, हाफ से गुणित करना, 8 आए, 8 × 256 आते हैं। समझो तीसरे वर्गमूल को हमने डिवाइड किया, 4 / 32 कितने आए? 1/8 आए, उससे 4 को ही गुणा करो, हाफ आए, उससे हाफ से 16 को गुणा करो, 8 आए, और 8 × 256। अभी दो को डिवाइड करो, चौथे वर्गमूल को, हाँ चौथे वर्गमूल दो को हम 32 से डिवाइड, सॉरी ये रखना यहाँ, चौथे वर्गमूल दो को हमने 32 से डिवाइड किया, 1/16 आए, 1/16 × 4, हाँ 1/4 आए, 1/4, सॉरी दो से पहले रह गया बीच में, एक 16 अंश रह गया ना, एक 16 अंश को मल्टीप्लाइड बाय दो, ये बीच वाली स्टेप रहेगी, एक 16 अंश को दो से हमने गुणा किया, हाँ, और फिर उससे आगे आगे को ऐसे गुणा करते जाना। देखो हमने क्या किया था, फिर से पहले हमने चार को क्या किया था, चार को 32 से डिवाइड किया, कितना आया था? हाँ 1/8 से चार को ही गुणा किया था, हाफ आया, और उससे 16 से मल्टीप्लाई किया था। अभी यहाँ क्या समझाते देखते हैं, देखो ऊपर से चौथी लाइन, अथवा असंख्यात आवलियों का यानी 32 का पल्योपम के तीसरे वर्गमूल में भाग देने पर यानी 16 में भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे तीसरे वर्गमूल को गुणित करके गुणित राशि से, तीसरा वर्गमूल है ने 256, चार मैंने 16 बताए, चार चाहिए। लब्ध कितना आया? हाँ 1/8, उससे तीसरे वर्गमूल को गुणित करके, हाँ 4/8 यानी हाफ आया ना, उस गुणित राशि से दूसरे वर्गमूल को गुणित करके यानी 16 को गुणित करके यानी 16/2 जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं यानी 8 × 256 आते हैं। इसी क्रम से असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर असंख्यात आवलियों का प्रतरावली में भाग देना। अब ये शब्द आया यहाँ प्रतरावली, आवली गुना आवली इज इक्वल टू प्रतरावली, प्रतरावली यानी स्क्वायर आवली, जैसे हम स्क्वायर फुट कहते हैं ना, 1 फुट × 1 फुट एक स्क्वायर फुट हो गया, वैसे आवली इंटू आवली अवली का जो वर्ग है उसको प्रतरावली कहते हैं। तो असंख्यात आवलियों का, यानी पहली जो आवली गुणा असंख्यात असंख्यात आवली आ गई, उसका आवली स्क्वायर में भाग देना है। प्रतरावली यानी आवली इंटू आवली, आवली का स्क्वायर, उसमें भाग देना जो भाग लब्ध आवे। अब यही फॉर्मूला, पहले में उसी प्रतरावली को ही हम उसको जो लब्ध आवे उससे प्रतरावली को गुणित करेंगे, लब्ध आया उससे प्रतरावली को गुणित करेंगे, उस गुणित राशि से अब आगे आगे वाले वर्गमूलों को गुणित करके जाना, प्रतरावली के ऊपरी वर्ग को गुणित करके। इस प्रकार द्वितीय वर्गमूल पर्यंत सर्व ऊपरी ऊपरी वर्ग स्थानों को निरंतर गुणित करने पर वहां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं। इस प्रकार निरुक्ति का कथन समाप्त हुआ। ये निरुक्ति ने कैसा डिराइव किया ये उन्होंने बता दिया, यानी जितने हम स्थान चले आते हैं आगे, मान लेते चौथे स्थान पर आए, चौथे वर्गमूल को हमने डिवाइड किया, जो संख्या आएगी उसे उसी से गुणा करना, जो लब्ध आए उसे अगले वाले अगले वाले अगले वाले को गुणा करते जाना, तो उतने आठ जो हमारी संख्या निकली थी उतने आएंगे। उदाहरण उन्होंने बताया, देखो जो अभी हमने देखा था उसी को वो समझा रहे। असंख्यात आवली प्रमाण 32 का भाग पल्ले के प्रथम वर्गमूल 256 में देने पर 8 लब्ध आते हैं। इस प्रकार सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि 2048 में 8 ही प्रथम वर्गमूल होते हैं। 248 इज इक्वल टू 8 इंटू 256। द्वितीय वर्गमूल 16 में 32 का भाग देने पर एक द्वितीयांश लब्ध आता है। अब इसको इससे क्या करना है, द्वितीय वर्गमूल को ही गुणा करना, इसका द्वितीय वर्गमूल से गुणा करने पर 8 लब्ध आते हैं। तो 8 बार प्रथम वर्गमूल हो गए ना, 8 इंटू 256। तृतीय वर्गमूल 4 में 32 का भाग देने पर एक अष्टमांश लब्ध आता है, इसका दूसरे 16 और तीसरे 4 वर्गमूल के परस्पर गुणनफल 16 से गुणा करने पर 64 से गुणा करने पर 8 लब्ध आते हैं। यानी जो एक अष्टमांश लब्ध आया था उसको मल्टीप्लाइड बाय तृतीय वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल, यानी एक अष्टमांश इंटू 4 इंटू 16, तो 8 आ गए, यानी टोटल 8 आ गए। 64 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8। इस प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए, यानी ऐसे असंख्यात स्थान भी नीचे आएंगे तो जिसको हमने डिवाइड किया उसी को गुणा करना और आगे आगे के वर्ग को उसमें गुणा गुणित करते जाना। अब यहाँ निरुक्ति समाप्त हो गई, अब विकल्प बताएंगे। हमने जैसे मिथ्या दृष्टि में भी विकल्प देखे थे, द्विरूप घनधारा, द्विरूप वर्गधारा में, घनधारा में, घनाघनधारा में, विकल्प का अर्थ होता है उसके नीचे के अधस्तन स्थानों में या उपरीन स्थानों में उसको गुणा या भागाकार जो कुछ होता है उसका संबंध बताना, इसको ये विकल्प कहते हैं। हम कहते हैं ना ऊपर और नीचे सेम फिगर आती है और अपना फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, अभी यहाँ पल्ले के असंख्यात भाग, क्योंकि हमारी फाइनल फिगर कितनी है अभी यहाँ जो 2048 है तो उतनी आनी चाहिए। तो उसके लिए वो अलग अलग विकल्प बताएंगे, अलग अलग ऑप्शंस बताएंगे, किसी विशिष्ट संख्या से विशिष्ट संख्या को गुणित करके विशिष्ट संख्या को भाग देंगे तो अपना फाइनल रिजल्ट 2048 आएगा। तो ये द्विरूप वर्गधारा में भी बताएंगे, घनधारा में भी बताएंगे और घनाघनधारा में भी बताएंगे। अब देखते हैं उसको। तो विकल्प दो प्रकार का है, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प, यानी जो हमारी पल्ले की धारा चल रही है, पल्ले का असंख्यात भाग है तो पल्ले के नीचे के जितने स्थान हैं उसके साथ जो कुछ भागाकार वगैरह होगा तो उसको हम कहेंगे अधस्तन, और पल्ले के ऊपर के फिगर्स के साथ जो कुछ हम भागाकार करेंगे उसको कहेंगे उपरिम। देखो जीव के बारे में, मिथ्या दृष्टि जीव राशि के बारे में अधस्तन विकल्प नहीं थे द्विरूप वर्गधारा में, क्यों नहीं थे, क्योंकि वो उसकी जो ध्रुव राशि थी, ध्रुव राशि वो 16 का वर्ग करके उसको 13 से डिवाइड किया था, एंड इट वॉज ऑलरेडी बिगर देन 16, तो इसलिए उसके नीचे वाले स्थानों के साथ उसका भागाकार संभव नहीं था। तो हमने घन धारा और घनाघन धारा में उसको नीचे के विकल्प बताए थे। परंतु यहाँ पल्ले से छोटी फिगर्स है, क्योंकि पल्ले का भागाकार जो है 32, अब यहाँ पन्नटी और 32 के बीच में जो जितने बीच वाले फिगर है उसके साथ इसका भागाकार संभव है, इसलिए यहाँ पर द्विरूप वर्ग धारा में भी अधस्तन विकल्प है जो मिथ्या दृष्टि के बारे में नहीं थे, क्योंकि पल्ले से जितनी छोटी फिगर्स है उसके साथ, अभी जैसे प्रथम वर्गमूल के साथ बताया, द्वितीय वर्गमूल के साथ बताया, तृतीय वर्गमूल के साथ बताया, ये सारे विकल्प ही कहेंगे ना हम इसको, तो वैसे पॉसिबल है। इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो, विकल्प दो प्रकार का है, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। उन दोनों में से पहले द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं। असंख्यात आवलियों से पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर, यानी 256 × 8, देखो यहाँ 32 भी असंख्यात है और 8 भी असंख्यात है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वाली बात है। मैंने उन्होंने ऊपर समझाया था, तो क्या कहते हैं, असंख्यात आवलियों से यानी असंख्यात से पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है। तो पल्योपम इज इक्वल टू, हमने पल्ले पनट्ठी मान लिया है और वर्गमूल उसका होता है 256, और असंख्यात आवली के लिए हमने यहाँ 8 मान लिया है, तो 256 × 8 इज इक्वल टू 2048, ये सासाधन की जीव राशि है। अथवा अवहार काल का, इसको अवहार काल कहा, जो हमने 32 मान लिया है। कल हमने देखा था ना, पल्योपम का असंख्यातवा भाग, इतने जीव दूसरे में भी है, तीसरे में भी है गुणस्थान में, चौथे में भी है और पांचवें में भी है, फिर भी वो जो अवहार काल यानी जिस काल से हम डिवाइड करते हैं वो हर एक गुणस्थान का प्रमाण अलग अलग है। तो सासाधन के लिए उसका प्रमाण यहाँ हमने 32 मान लिया है, 32 से डिवाइड करते, तो 32 को यहाँ अवहार काल कहा है। जो अवहार काल, काल क्यों कहा, क्योंकि वो हम आवली में और इसमें माप रहे ना, इसलिए उसको काल कहा। तो क्या कहते हैं, अवहार काल का यानी 32 का पल्योपम के द्वितीय वर्ग मूल में भाग देने पर, अभी हमने उसको ऊपर देखा था ना 16 को भाग देने पर जो लब्ध आवे, कितना आता है 16 / 32, आधा आ गया। उससे द्वितीय वर्गमूल को गुणित करके यानी 16 × 1/2, उस गुणित राशि से 8 से प्रथम वर्गमूल के गुणित करने पर यानी 256 को गुणित करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि होती है, ये 248 संख्या आ गई। यानी कहीं से भी फाइनल फिगर 248 पर आएंगे अब, ये हम 2048 उदाहरण, पन्नट्ठी का द्वितीय वर्गमूल 16, अवहार काल 32, 16/32 इज इक्वल टू हाफ, हाँ बाय यानी डिवाइडेड, 16 × 8 इज इक्वल टू 8 और 256 × 8 इज इक्वल टू 2048। अथवा अभी और कोई ऑप्शंस बताएंगे, जितने पॉसिबिलिटीज है उसको अथवा करके बताएंगे। अवहार काल कहने 32 का पल्योपम के तृतीय वर्गमूल में भाग देने पर, तृतीय वर्गमूल कौन सा है अपना, 4 / 32 कितने आए, हाँ 1/8, जो लब्ध आवे यानी एक अष्टमांश लब्ध आया, उससे तृतीय वर्गमूल को गुणित करके यानी 4/8 हो गए यानी 1/2 आ गए, उस गुणित राशि से यानी आधे से द्वितीय वर्गमूल को गुणित करके, 16 को गुणित करना, फिर भी उस गुणित राशि से यानी 8 से प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर यानी 256 × 8 सासाधन सम्यक दृष्टि यानी 2048 जीव राशि होती है। ख्याल है ना, हाँ ये उन्होंने पहले समझाया था, उसी को उदाहरण के द्वारा लिखा है, यही उदाहरण यहाँ उन्होंने करके बताया है। पनट्टी का तृतीय वर्गमूल 4 है, चार डिवाइडेड बाय 32 एक अष्टमांश आए, चार गुणा एक अष्टमांश आधा आया, 16 को आधा से गुणा करेंगे तो 8 आए और 256 को 8 गुणा करेंगे तो 2048 आ गए। इसी क्रम से असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर है ना, असंख्यात वर्गस्थान नीचे आएंगे तो असंख्यात आवलियों का प्रतरावली में भाग देना, यानी आवली गुणा आवली इज इक्वल टू प्रतरावली और असंख्यात गुणा आवली इज इक्वल टू असंख्यात आवली, तो उसमें भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे प्रतरावली को गुणित करके, जो लब्ध है ना अभी उससे प्रतरावली को ही गुणित करना और आगे के जितने वर्गमूल रहेंगे उस सबको गुणित करके जाना। उस गुणित राशि से प्रतरावली के ऊपरी वर्ग को गुणित करके इसी प्रकार प्रथम वर्गमूल पर्यंत उपरिम उपरिम संपूर्ण वर्गस्थानों को निरंतर गुणित करने पर सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि होती है, यानी फाइनल फिगर 256 गुना 8 इज इक्वल टू 2048 आएगी। हाँ, उसका उत्तर उतना ही आने वाला है। हमने देखा था ना, जितने वर्गस्थान नीचे जाओ कहीं भी जाओ उसको हमने डिवाइड किया पहले, तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करना और आगे के सभी वर्गमूलों को इनटू 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 गुणा करते जाना। उदाहरण उन्होंने बताया, देखो प्रतरावली दो मान ली, प्रतरावली को 32 यानी असंख्यात आवली से उन्होंने डिवाइड किया तो 116 आ गए, 2 गुना 116 एक अष्टमांश आ गए, 4 गुना एक अष्टमांश आधा आ गया, 16 गुना आधा इज इक्वल टू 8 तो 256 गुना 8 इज इक्वल टू 2048 सासादन जीव राशि आ गई। यद्यपि निरुक्ति का कथन करते समय यह विषय पहले वहां पर कह आए हैं, अभी हमने कैसे आया उसको डिराइव करके उन्होंने बताया था, तो भी इस विषय के यहाँ पर पुनः कथन करने से पुनरुक्त दोष नहीं आता, यानी दोबारा कहना इसको कहते पुनरुक्त दोष, परंतु यह दोष यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों ही वर्गधाराओं का आश्रय लेकर स्थित अधस्तन विकल्प का संबंध है। वहाँ निरुक्ति कैसे कैसे असंख्यात आया उसकी बात की थी और यहाँ द्विरूप वर्गधारा में अधस्तन विकल्प बता रहे हैं, फिर घनधारा में बताएंगे, घनाघन धारा में भी बताएंगे। इस प्रकार द्विरूप वर्गधारा में अधस्तन विकल्प का कथन समाप्त हुआ। अब घनधारा में अधस्तन विकल्प को बताते हैं। घनधारा ने अभी वो पल्ले का घन या वो घन का पहला वर्गमूल या दूसरा वर्गमूल उसके साथ इसका संबंध लगाएंगे। असंख्यात आवलियों से पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके यानी 32 से 256 को गुणित करके जो लब्ध आवे, अभी जरा इसको बराबर समझना। अभी हम घन धारा बता रहे, 32 उन्होंने मान ली है, पल्ले का असंख्यात भाग है ना, तो असंख्यात जो है वो असंख्यात आवली कहते हैं, उसके लिए हम 32 लिया। अभी हमारी ये द्विरूप वर्गधारा हम यहाँ लिखते हैं, ये वर्गधारा है, इसकी घनधारा लिखनी है तो क्या करेंगे, यहाँ 4 का घन, 16 का घन, 256 का घन और यहाँ 50 का घन होगा, बराबर, और 256 का घन होगा, या अन्य भाषा में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 50 के घन का प्रथम वर्गमूल होगा, ये 50 के घन का द्वितीय वर्गमूल, 16 का घन जो 4096 है, हम उल्टा घनधारा में उल्टा आएंगे तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि वो पल्ले की भाषा में ही समझाएंगे, पल्ले का घन का प्रथम वर्गमूल, पल्ले के घन का द्वितीय वर्गमूल, हमको यहां से देखना है तो पल्ले के द्वितीय वर्गमूल का घन, समझ में आ रहा है मैं क्या करें, पल्ले के द्वितीय वर्गमूल का घन कहो या पल्ले के घन का द्वितीय वर्गमूल को एक ही बात है, यानी यह हम द्वितीय वर्गमूल के ना ऐसा दो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं उसके लिए? हाँ ये बराबर है ना, हाँ या ऊपर से लिखना है तो वो स्क्वायर रूट का उसका घन करना पड़ेगा, तो यह हम ऐसा लिखेंगे। ऐसा करने से आगे के फिगर समझने में आसान होगा, क्योंकि वो संख्याएं बताएंगे लाखों करोड़ों अब्जों में, तो अपने कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा समझाने में उतना थोड़ा इजी है, क्योंकि फिगर्स वो अभी बताएंगे इसमें उदाहरण लेके, वो अब्जों की फिगर बताएंगे, वो हम पढ़ेंगे खाली, उससे कुछ समझने में आने वाला नहीं है। देखो आगे हम पढ़ेंगे इसको, कहाँ से शुरू किया? असंख्यात आवलियों से, नीचे का पैराग्राफ घनधारा में बता रहे ना, असंख्यात आवली से यानी 32 से पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे, 256 गुणा 32 जो लब्ध आएगा, उससे अभी उसका नीचे सबसे अंतिम लाइन में 8192 उन्होंने लिखा है, 256 गुणा 32 इज इक्वल टू 8192 एकदम अंतिम लाइन में लिखा है, बराबर। उसका ये लब्ध है, उसका क्या करना है? घनपल्ले के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर, घनपल्ले के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर, ये क्या है, 256 का घन भी है, हाँ डिवाइड करना, घन का पल्ले के घन का प्रथम वर्गमूल है वो 256 का क्या है, घन है, 256 का घन है ना, यही बात, जो पल्ले के घन का प्रथम वर्गमूल है वही पल्ले के प्रथम वर्गमूल जो 256 है उसका घन है, कहीं से भी बोलो ना आप, वही आने वाली। हाँ अब सुनो देखो क्या कहते, इसीलिए मैंने प के स्क्वायर और प के घन में लिया, क्योंकि हम उसको सॉल्व करके फिगर लेते बहुत बढ़िया आती है, ऐसे 8192 उन्होंने कर दिया, उसके बदले में हम ऐसा ही रखेंगे, 256 गुना 32 के फॉर्म में ही रखेंगे हम उसको, 256 गुना 32 का अपनी भाषा में लिखना है, तो अभी 256 ने स्क्वायर रूट पर गुणा 32 असंख्या दावली है ना, थोड़ा नीचे लिखते क्योंकि इससे हमको डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट पर गुणा 32 इससे किसको डिवाइड करना है, अभी देखो यहाँ घन पल्ले के प्रथम वर्ग मूल में भाग देने पर, हाँ घन पल्ले का प्रथम वर्ग मूल, वर्गमूल प घन ऐसा है ना, वर्गमूल प घन या प वर प, देखो ऐसा है इसका, देखो ये इसका घन है, बराबर। अब इसके साथ एक निकाल दो, स्क्वायर रूट प का वर्ग करो, प आएगा तो प बाय 32 आएगा, अपना उदाहरण तो यही है, प में सिंप्लीफाई करते तो ये आसान है, अगर वो फिगर्स में करते हैं तो फिर हम देखेंगे, ये उदाहरण सॉल्व करके दिखाया उन्होंने, देखो क्या कहते हैं, मैं इसको फिर पढ़ूंगी, जहां हम पढ़ते हैं वहां आप फिगर्स लिखेंगे तो आसान हो जाता है। देखो असंख्यात आवलियों से, वहां लिख देना 32 उसके टॉप पर पेंसिल से, पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को यानी 256 को गुणित करके, और अपनी भाषा में लिखना है तो स्क्वायर रूट पर इंटू 32 जो लब्ध आवे, उसका घनपल्ले के प्रथम वर्गमूल में यानी स्क्वायर रूट पर घन लिखो, यानी ऐसा होगा ना, अभी स्क्वायर रूट पर घन को रूट पर इंटू 32 से हमने डिवाइड किया देने पर सांसाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि होती है। अभी उसका कारण बताते हैं, क्योंकि पल्योपम के प्रथम वर्गमूल से घनपल्य के प्रथम वर्गमूल के भाजित करने पर पल्योपम का प्रमाण आता है। खाली ऐसा हम पढ़ेंगे तो नहीं समझता, अब यहाँ जो हमने लिखा है ऐसा तो इसके साथ इसका एक चला जाएगा तो स्क्वेयर रूट गुणा स्क्वेयर रूट प जो है इज इक्वल टू प, क्या है ना, पल्य आएगा डायरेक्ट पल्य आता है। अनंतर यानी उसके बाद असंख्यात अवलियों से यानी 32 से पल्योपम के भजित करने पर भाजित चाहिए सांसाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है घन पल्य में। इस प्रकार सांसाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनंतर भागहार का ग्रहण किया है, भाग का ग्रहण किया है। ये जो अभी हमने सॉल्व किया उसी को यहाँ दिखाते उदाहरण। पल्योपम का प्रथम वर्गमूल 256 और घन पल्य का प्रथम वर्गमूल, अभी इसको गिनो, 1,67,77,216। तो पहले मैं 256 गुणा 32 किया तो 8,192 आए। अब ये जो 1,67,77,216 डिवाइडेड बाय 8,192 इज इक्वल टू डायरेक्ट उन्होंने 2,048 निकाले। तो हमने जो प की भाषा में लिखा है ये सॉल्व करने में और समझने में आसान है। शंका, घनधारा में अधस्तन विकल्प रहा आवे, यानी शंकाकार कहता है घनधारा में अधस्तन विकल्प बताते हो तो हमको मान्य है, मंजूर है, रहा आवे यानी भले हो, परंतु द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प घटित नहीं होता, क्योंकि उसने वो एक बार सुना था मिथ्या दृष्टि के, जब हमने वो 13 का प्रमाण निकाला था द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प नहीं थे, क्योंकि अवहार काल का, अवहार काल यानी 32 पल्योपम से नीचे के वर्ग स्थानों में भाग दिया जाता है तो सांसाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा प्रश्न है उसका। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पल्योपम से नीचे के वर्ग स्थानों को अवहार काल से, अवहार काल यानी वो 32 जो हमने मान लिया है, अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उससे, यानी अभी हमने देखा था ना 32 से हमने 2 को भाग दिया था तो 1/16 आया, तो जो लब्ध आवे उससे क्या किया था, उसके योग्य वर्ग स्थानों को गुणित करने पर, उसके ऊपर के सभी वर्ग स्थानों को गुणित करने पर अथवा केवल अपवर्तित करने पर, अर्थात पल्योपम को अवहार काल से भाजित करने पर जहाँ पर सांसाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है वह अधस्तन विकल्प यहाँ पर स्वीकार किया गया है। यानी भले वो प्रमाण कुछ भी हो जिसको हम भाग देते हैं, जिस वर्गमूल को मान लेते 10वें वर्गमूल को भाग दिया, अभी हमने देखा था ना, तो 10वें वर्गमूल को भाग दिया तो जो संख्या आएगी उससे पहले 10वें वर्गमूल को गुणा करना, फिर 10वां 9वां 8वां 7वां सबको गुणा करते जाना तो अंतिम में वही फिगर आती है ये असंख्यात प्रथम वर्गमूल जितनी। हाँ, भागहार करना। अभी उदाहरण उन्होंने बताया, पल्योपम का अधस्तन वर्ग स्थान 256, 256 को 32 से भाग दिया तो 8 आ गए, उससे 256 को ही गुणा करना, हमारा फॉर्मूला यही है, 256 को 8 से गुणा करते हैं तो 2048 आ गए, अथवा डायरेक्ट पल्ले को ही डिवाइड करो, पल्ले डिवाइडेड बाय 32, पन्नटी डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 2048। अब शंकाकार पूछता है, मिथ्या दृष्टि जीव राशि की प्ररूपणा में भी इस नए के अवलंबन करने पर द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प बन जाता है यानी जैसे यहाँ उन्होंने प्रथम वर्गमूल को भाग दिया या डायरेक्ट पन्नटी को ही भाग दिया ना, यानी पल्ले को, वैसे वहाँ पर भी करना चाहिए था। मिथ्या दृष्टि की जीव राशि निकाली थी, वहाँ पर भी क्यों नहीं किया, ऐसा उसका कहना है। इसलिए वहाँ पर उसका कथन करना चाहिए था समाधान, क्योंकि यह प्ररूपणा अवहार काल प्रधान है। यह प्ररूपणा यानी अभी सासाधन वाली मिश्र अविरत समय दृष्टि और संयता संयत, ये चार गुणस्थानों में अवहार काल की मुख्यता से यहाँ कथन है। पल्ल्य को अवहार काल से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या आती है, तो यहाँ अवहार काल प्रधान है, इसलिए पल्ल्योपम से नीचे के वर्गस्थानों को अवहार काल से भाजित करके यदि सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि उत्पन्न करना शक्य है तो यहाँ पर अधस्तन विकल्प भी संभव है। वो कैसे संभव है, उन्होंने करके दिखाया है। पहले वर्गमूल को या दूसरे या तीसरे चौथे को भाग देकर आगे वाले उपरिम सभी वर्गों को गुणित करने पर वो सेम राशि आती है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण निकालते समय द्विरूप वर्ग धारा में इस प्रकार अधस्तन विकल्प संभव नहीं है, यानी वहां तो ध्रुव भागहार ही जीव राशि के उपरिम वर्ग वाला था। भागहार का प्रमाण कितना, यहाँ जो भागहार का प्रमाण कितना था, कितना है, असंख्यात आवली, जो पल्ले से बहुत छोटी फिगर है, इसलिए वो अधस्तन विकल्प बनते हैं उसमें। और वहां भागहार का प्रमाण कितना था, जीव राशि के उपरिम वर्ग का 13वां भाग किया था, 256/13, जो 16 से बहुत बड़ी फिगर है ना, 256 वाली, इसलिए उसमें अधस्तन विकल्प नहीं है, ऐसा कहा है। यानी इसी नए का आश्रय करके मिथ्या दृष्टि जीव राशि की प्ररूपणा में अधस्तन विकल्प नहीं होता, ऐसा कहा है। यह नए यहाँ पर प्रधान है, कौन सा नए, यह अवहार काल वाला। इस प्रकार घनधारा समाप्त हुई, घनधारा की बात बता दी उन्होंने, विशेषार्थ अभी जो हमने पढ़ा उसी का और समझाते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण निकालने के लिए असंख्यात आवली प्रमाण जो भागहार है, यानी जो हमने 32 लिया, वह पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल से छोटा है, भागहार राशि छोटी है, इसलिए यहाँ पर अधस्तन विकल्प बन जाता है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण निकालने के लिए जो भागहार कहे आए हैं, वो हमने देखा था, जीव राशि के वर्ग डिवाइडेड बाय वो मिथ्या दृष्टि वाला अनंत, यानी 256/13 देखा था हमने, वह जीव राशि के उपरिम वर्ग के प्रथम वर्गमूल जीव राशि से बड़ा है, अतएव वहां पर द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प किसी प्रकार भी संभव नहीं है, किसी भी नए के आश्रय से वो नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। अब घनाघन धारा में अधस्तन विकल्प बतलाते हैं। अभी जो जैसे हमने घन धारा में देखा ना, ऐसे घनाघन धारा में बताएंगे वो। असंख्यात आवलियों से यानी 32 से पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर, यानी स्क्वेयर रूट प को गुणित करने पर जो लब्ध आवे, अभी क्या क्या किया हमने, 32 से किस किस को गुणा किया, पल्ले के प्रथम वर्गमूल को जो लब्ध आया उससे घन पल्ले के द्वितीय वर्गमूल को, अभी यहाँ फिर लिखेंगे जरा, क्या कहना चाहते, देखो घनपल्ल्य का द्वितीय वर्गमूल, ये घनपल्ल्य का प्रथम वर्गमूल और ये घनपल्ल्य का द्वितीय वर्गमूल, क्या लाते है? अभी घनाघन में गए नहीं हम, घनाघन वाली बात तो ऊपर जिसको डिवाइड करना है उसमें रखेंगे। देखो यहाँ तक आए थे 32 गुणा पल्ले का प्रथम वर्गमूल, अभी गुणा क्या है, घन का द्वितीय वर्गमूल, 2 अंडर रूट पर इस टू 3, बराबर है, गुणित करके अभी आगे चलो। अभी जो लब्ध आवे, अभी ये घनधारा का प्रथम वर्गमूल और ये द्वितीय वर्गमूल, जैसे पनट्टी के द्वितीय वर्गमूल का घन है ना ये, और यहां से लेको तो प के घन का द्वितीय वर्गमूल है। 16 की भाषा में कहना तो 16 का घन है, ये 16 का घन है ना। अब इस राशि से अब किस में भाग देना है उसको देखो। अभी अपना फिर ये धारा यहां लिखी हमने, घनाघन पल्य के द्वितीय वर्गमूल में भाग देना। अब ये घनाघन पल्य है, ये घनाघन पल्य का प्रथम वर्गमूल और ये घनाघन पल्य का द्वितीय वर्गमूल, यानी इसका ये घन है ना, इसका घन हुआ, यानी यहां तो द्वितीय वर्गमूल के घन का घन हुआ। ये अपनी अभी फिगर ऊपर लिखेंगे हम इसको, किसको, पल्य के घनाघन का द्वितीय वर्गमूल है ये, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। पल्य के घनाघन का द्वितीय वर्गमूल, बराबर, ये ख्याल में आए तो आगे हम बढ़ेंगे। इसको अभी डिवाइड करके दिखाते हैं, यानी ये क्या है, ये घन का घन है, द्वितीय वर्गमूल, ये जो घन के द्वितीय वर्गमूल का घन है। अभी इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो ये घन है ना, घन का द्वितीय वर्गमूल गुणा घन का द्वितीय वर्गमूल गुणा घन का द्वितीय वर्गमूल, घना घन का द्वितीय वर्गमूल को हमने सिंप्लीफाई किया। देखो देखो ये लिखना है हमको, पर एस टू नाइन का द्वितीय वर्गमूल है, वही पर एस टू थ्री का द्वितीय वर्गमूल का घन है, तो पर एस टू थ्री का द्वितीय वर्गमूल इंटू वही फिगर तीन बार लिखो, वही हमने यहां लिखी ना, क्या लें? अब उसके साथ ये नीचे वाली एक निकाल दो, ये निकाली, ये अंतिम वाली यह निकाली, तो अभी क्या आया, ये द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल कितना होगा, प्रथम वर्गमूल होगा, द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल तो प्रथम वर्गमूल होगा, प घन का प्रथम वर्गमूल होगा, बराबर। अब यहां देखो, प घन का प्रथम वर्गमूल है, वही क्या है, प्रथम वर्गमूल का घन है। अब इसको वैसा लिखो, ऐसी बात आ गई। अब इसके साथ इसको निकाल दो, स्क्वायर रूट पर गुणा स्क्वायर रूट पर कितना आया, प आया, प डिवाइडेड बाय 32 आ गया। ये लंबा चौड़ा ऐसा भगता, यानी इस तरह से वो नीचे की फिगर लेते हैं और उसके लिए ऊपर आए। ये तो ऐसा ही, इसमें तो प की भाषा में लिखा नहीं कहीं, वहां तो डायरेक्ट फिगर ही बता दिए। देखो हम इसमें पढ़ेंगे, देखो चौथी लाइन पर आए, क्योंकि घनपल्य के द्वितीय वर्गमूल का, थोड़ा इमेजिन करो ना, घनपल्य के द्वितीय वर्गमूल का घनाघन पल्य के द्वितीय वर्गमूल में भाग देने पर, ये घनाघन पल्य के द्वितीय वर्गमूल में भाग देने पर, इसका किसी संख्या का उसी के घन में भाग देने पर क्या होगा, उसका वर्ग आएगा, है ना, भाग देने पर घनपल्य का प्रथम वर्गमूल आता है, द्वितीय वर्गमूल का वर्ग करो तो प्रथम वर्गमूल आया, प्रथम वर्गमूल आता है। अनंतर पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल का, पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल का घनपल्ले के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर पल्ल्योपम आता है, यानी इसका स्क्वायर आता है, यानी पल्ल्य आता है। अनंतर असंख्यात अवलियों का यानी 32 का पल्ल्योपम में भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि जीवराशि का प्रमाण आता है। फाइनल फिगर क्या है? प डिवाइडेड बाय 32। घनाघन धारा में इस प्रकार सासादन सम्यक दृष्टि जीवराशि का प्रमाण आता है ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनंतर भाग का ग्रहण किया। अभी ऐसा हम कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे जो समान आवे और अंत में 32 रह जावे नीचे, उसी का उदाहरण उन्होंने बताया है। देखो पल्ल्योपम का प्रथम वर्गमूल 256, घनपल्ल्य का द्वितीय वर्गमूल 4096, घनपल्ल्य का द्वितीय वर्गमूल यानी 16 का घन 4096, घनाघन पल्ल्य का द्वितीय वर्गमूल, देखो घनाघन पल्ल्य यहाँ है पल्ल्य रेस्टू 9, और उसका द्वितीय वर्गमूल कितना आया देखो, घनाघन पल्ल्य का द्वितीय वर्गमूल 68,71,94,76,736। अभी ऐसा हम पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में, इसलिए ऐसा लिखा कि घनाघन पल्ल्य का द्वितीय वर्गमूल, ऐसा समझने में हम एटलीस्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं ना ऊपर नीचे, इसलिए आसान पड़ेगा आपको। तो इस फिगर को जो अभी हमने पढ़ी ना, कौन सी 68,71,94,76,736 डिवाइडेड बाय जो हमने देखा था यहाँ क्या क्या किया था देखो कि 32 गुणा 256 गुणा 4096, 256 तो प्रथम वर्गमूल था और 4096 घन का द्वितीय वर्गमूल, और फाइनल फिगर कितनी आ रही 2048। ये करके देखना घर में बराबर आता है कि यहाँ पर द्विगुणाधिकरण के कर लेने पर अधस्तन विकल्प समाप्त हो जाता है, वो उन्होंने लिए नहीं है परंतु जैसे उन्होंने बहुत पहले समझाया था ना, द्विगुणाधिकरण किसको कहते हैं, जैसे क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क इज इक्वल टू क, अभी मान लेते इसको दो गुना करेंगे तो क्या हुआ, ये फाइनल रिजल्ट का भी दो से डिवाइड करेंगे, क स्क्वायर डिवाइडेड बाय दो क कितना हो गया, वहाँ क डिवाइडेड बाय दो आ जाएगा, यहाँ तीन गुना करो यहाँ तीन आएंगे नीचे, यहाँ असंख्यात करो यहाँ भी नीचे असंख्यात आएंगे, इसको द्विगुणाधिकरण कहते हैं। ये तो अधस्तन विकल्प हो गए, लेते ना अनंत स्थान तक देखे थे, अधस्तन द्विरूप वर्ग धारा में नहीं था, घन धारा और घनाघन में वहां भी देखा था, उपरिम तो बहुत अनंत स्थान तक देखा था, वहां तो उन्होंने दो चार स्थान बतलाए भी समझाए और कहा इसी प्रकार असंख्यात अनंत 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 स्थान आप सब में आएंगे, इससे बड़ी किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं और डिवीजन में भी उतनी उसको गुणा करेंगे, पहले उतना डिवाइड करेंगे, अनंत वर्ग स्थान ऊपर जाएंगे वहां, वैसे नीचे भी उतने ही 32 गुना इतना 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 करो, अभी वो फाइनल में उतनी संख्या रहनी चाहिए पर डिवाइडेड बाय 32, उसके लिए जितने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो गए उसको सब हम ले सकते हैं, वो सब अभी उपरिम विकल्प में तो बहुत हो गया, अधस्तन में तो कम है, उपरिम में तो अनंत तक जाएंगे। देखो पढ़ेंगे इसको, उपरिम विकल्प तीन प्रकार का है, अभी शब्द तो वही आने वाले जो पहले हमने देखे थे, गृहित 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 और गृहित गुणकार, उनमें से पहले द्विरूप वर्ग धारा में गृहित उपरिम विकल्प को बतलाते हैं, पहले द्विरूप वर्ग धारा में बताएंगे, क्योंकि पल्ले के आगे वाले फिगर देखेंगे, पल्ले का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, इस तरह असंख्यात आवलियों का पल्योपम में भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। उदाहरण वही बताए उन्होंने, 85/32=2048। अभी ये तो बार बार बताया था, फिर दोबारा बताने की क्या जरूरत थी। तो वहां कहते हैं कि उसके जितने अर्ध छेद है ना, 32 से डिवाइड किया तो 32 के भागार के जितने अर्ध छेद हो, भागार के जितने टोटल अर्ध छेद है, उतनी बार ऊपर की राशि के अर्ध छेद करना और छोड़ देना। सब पूरे टोटल अर्ध छेद नहीं करना, जितने बार भागाकार के अर्ध छेद होते हैं। अभी भागार के 32 के अर्ध छेद कितने हैं तो निकालो, एक बार भाग दिया 16 आ गए, दो बार दिया 8 आए, तीन बार आए 4 आ गए, चौथी बार कितने आए, 5 अर्ध छेद हुए, 32 के अर्ध छेद 5 हुए। अब कहते हैं 65,536 के भी इतने ही अर्ध छेद करो, कितने, 5 बार आधा आधा करो। थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, 65,536 5 बार हमको उसको 2 से डिवाइड करना है। बोलो अभी, बेतरिक सा, बेदुनी 4, बे साती 14, बेसक 12, बे अठी 16। दूसरी बार किया, बेके बे बेसक 12, बेत्रिक सह, बे अठी 16, बे चौक, बराबर है ना, 16,384। तीसरी बार करा, 8,192। तीन बार हुआ, चार बार करो, 4,409 और 1, 2, 3, 4, 5 बार ही करना है, 5 बार करो, 2,048। अभी नींद में भी 2,048 दिखेंगे आपको। यानी भागार के जितने अर्ध छेद है 32 के, उतनी बार ऊपर के फिगर के अर्ध छेद करने हैं। ये क्या कहना चाहते हैं एक बार ख्याल में आए ना, फिर भले हम वो आंकड़े होड़ आगे की नहीं करें तो भी चलेगा। यानी ख्याल में लेना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं वो। देखो उदाहरण लिख दिया, उक्त भागार के यानी 32 के जितने अर्ध छेद हो, कितने हैं अभी हमने देखे, 5 है, उतनी बार यानी सभी अर्ध छेद निकाले नहीं ऊपर के, उतनी बार यानी 5 ही बार पल्योपम राशि के अर्धच्छेद करने पर, यानी पल्ले को, पल्ले ने हमने पनट्टी मान ली, पनट्टी को 5 बार आधा 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 करेंगे तो 2048 आते। सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। देखो उदाहरण करके उन्होंने दिखाया, उदाहरण 32 भागार के 5 अर्धच्छेद होते हैं, अतः इतनी बार यानी 5 बार 65,536 के अर्ध छेद करने पर, अर्ध छेद यानी आधा 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 छेद करना उसका, 2048 प्रमाण सासादन सम्यक दृष्टि राशि आती है। अब कहते इसी प्रकार त्रिकट छेद है, त्रिकट छेद यानी उसका 3 से डिवाइड करते जा, चतुष्क छेद आप कहते शिव छेद और पंच छेद आदि का अवलंबन करने, आदि है ने अभी कितने अभी पॉसिबल है वो सब करके भी सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि उत्पन्न कर लेना चाहिए। अब ये त्रिकट छेद का उदाहरण देखते हैं हम। देखो क्या किया उन्होंने, 32 को 3 से डिवाइड किया है, तो एक बार 3 से डिवाइड किया तो अभी बहुत कुछ बचता है ना, 10 पॉइंट कहते 2/3 बचेंगे, फिर दोबारा और 3 से डिवाइड करेंगे। ये एक बार डिवाइड किया, उसको और एक बार डिवाइड हो सकता है तो 3×3 यहाँ 9 हो जाएंगे, और एक बार उसको डिवाइड किया ना तो 2 बार हुआ, और भी हो सकता है ना, यहाँ 3×9 नौत्रिक 27 यानी वहाँ तीन पूर्णांक है तो और एक बार उसको तीन का भाग जाएगा तो तीसरी बार किया यानी तीन त्रिकच्छेद आए उसके तो 32 डिवाइडेड बाय 3 3 3 27 हो जाएगा। यहाँ ये 3 × 3 9 है तो इसके त्रिकच्छेद कितने हो गए अभी इतने हो गए त्रिकच्छेद करने पर इतने बाकी रह जाएगा उसमें बराबर ये यहाँ लिखा है उन्होंने यहाँ जो उदाहरण में उन्होंने लिखा ना 32 के त्रिकच्छेद वह बीच में दो संख्या लिखी है वो नहीं चाहिए वहाँ पेंसिल से उसको ऐसा ऑप्शन करके निकाल दो। अब इसके जितने ऐसे त्रिकच्छेद आए ना कितने आए 32 डिवाइडेड बाय 27 आ गए उतने ही त्रिकच्छेद 65536 के करने तो 65536 के भी त्रिकच्छेद करेंगे तो एक बार तीन से डिवाइड किया और तीन से यानी फाइनली कितना हो जाएगा 65536 डिवाइडेड बाय 27 और उसको इससे भाग देना है भाग देना है ना उल्टा करके गुणा करना है 27 बाय 32 27 चले जाएंगे ये 65 डिवाइडेड बाय 32 अपना 2048 आ गए ऐसा ही चतुष्छेद करो उसका पंचच्छेद करो जितने भागहार के टोटल हो जाएगा छेद उतनी बार ऊपर के राशि के उतने छेद करना चतुष्छेद यानी उसका चौथा चौथा छेद करता जाओ फॉर्मूला यही है। इसी प्रकार चतुष्क छेद आदि के भी उदाहरण बना लेना चाहिए वो कहते भी आप बना लो अपने अपने पढ़ना है क्या अभी है चार लाइन नहीं तो पढ़ के समाप्त तो करना है आज नहीं कल समझना तो है क्यों आगे का हम देखते हैं अथवा और कोई अन्य पद्धति से बता रहे हैं ऊपरी विकल्प बता रहे ना अथवा असंख्यात आवलियों से यानी 32 से पल्योपम को गुणित करके यानी प को अभी प गुणा 32 किया डायरेक्ट जो लब्ध आवे उसका प्रतर पल्ले में भाग देने पर अभी ऊपरी में राशि देख रहे हैं प्रतर पल्ले ने पॉइंट टू प आवली स्क्वेयर नहीं वो प्रतरावली थी देखो 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 प्रतर शब्द किसी भी आगे लगाएंगे तो उसका स्क्वेयर होता है जैसे राजू इंटू राजू प्रतर राजू होता है जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी जगत प्रतर होता है ये प्रतर शब्द ने स्क्वेयर के बदले प्रतर लगाते हैं अब यहाँ पल्ले गुना पल्य प्रतर पल्य होगा क्या लेते हैं देखो क्या कहते हैं 32 गुना पल्योपम किया पल्ले गुना 32 उसका भाग किसको दिया प्रतर पल्ले को प स्क्वेयर डिवाइडेड बाय प इंटू 32 ये बहुत आसान में आसान है कितना हुआ प बाय 32 ये प को ये प स्क्वेयर डिवाइडेड बाय प इज इक्वल टू प डिवाइडेड बाय 32 देखो क्या है तो कितना होता है भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है इसका कारण यह है कि पल्योपम का प्रतर पल्य में भाग देने पर पल्योपम आता है यानी प स्क्वायर डिवाइडेड बाय प इज इक्वल टू प और फिर असंख्यात आवलियों का यानी 32 का पल्योपम में भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है द्विरूप वर्ग धारा में इस प्रकार सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है अतएव पहले गुणा करके अनंतर भाग का ग्रहण किया है। अब जो हमने अभी पर स्क्वायर लिखा वही उन्होंने यहाँ उदाहरण में लिखा है 65536 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65536 गुणा 32 इज इक्वल टू 2048 वो सासाधन सम्यक दृष्टि। अभी इसी को भागहार पर भी घटित करेंगे वो हम कल देखेंगे उसके भागहार के अर्धच्छेद और ऊपर के अर्धच्छेद वो देखेंगे कल इसको उसका फॉर्मूला ख्याल में लेना है बाकी वो जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकन वो सदा देत हो। अश्विन।